ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावा लोकेस्मिन् पुंसा वर्षा आरा स्मृता एकांता भक्ते गोविंदे या सर्वत्र इक्षाना हितवान एव लोकेस्मिन् पुंसा सर्वदा परास्मिता एकांता भक्तिर गोविंदे या सर्वत्र तद् इक्षणाम् एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसा सर्वत्र परास्मिता एकांता भक्तिर गोविंदे या सर्वत्र तद् इक्षणाम् हितवान् एव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्था परास्मिता एकांता भक्तिर्गोविन्दे या सर्वत्र तदीक्षणम् हितवान् एव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्था परास्मिता एकांता भक्तिर्गोविन्दे यः सर्वत्र तदीक्षणम्।
पुंसा स्वार्थ परा स्मृता एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्।
माताजी शब्दार्थ
इतना एवा निश्चय ही लोकेश में इस जगत में पुंसः जीव का स्वार्थ असली हित परः दिव्य अस्मृता माने जाने वाला एकांत भक्ति अनन्य भक्ति गोविंदे गोविंद के प्रति या जो सर्वत्र सभी तरह तदीक्षणम् गोविंद या कृष्ण के साथ संबंध को देखना। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों में बतलाया है मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। दोहराएंगे, इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है, जैसा कि समस्त शास्त्रों ने बतलाया है। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। तात्पर्य, इस श्लोक में आगत सर्वत तदीक्षणम शब्द भक्ति की चरम सिद्धि को बताते हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के कार्यकलापों से संबंध दिखती है। अति उच्च भक्त महाभागवत कभी भी किसी वस्तु को गोविंद से असंबद्ध नहीं देखते। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक चल तथा अचल वस्तु को देखता है, लेकिन वह उनके वास्तविक रूपों को नहीं देखता। प्रत्युत वह जहाँ कहीं भी देखता है, वहीं उसे परमेश्वर का रूप प्रकट होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 अध्याय प्यार 274 में यहाँ तक कि इस जगत में भी भक्ति भौतिक रूप से प्रकट होने वाली वस्तुओं को नहीं देखता। इसके बदले में हर वस्तु में गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है, तो वह उन्हें गोविंद रूप में देखता है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता हैं, सच्चिदानंद रूप हैं, वे सबों के उद्गम हैं, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 में एक पूर्ण भक्ति की पहचान यही है कि वह इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्वत्र दर्शन करता है। यहाँ तक कि एक परमाणु में भी, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, भक्त की यही पूर्ण दृष्टि है। इसलिए कहा गया है, नारायण मयम धीरा पश्यन्ति परमाथिना, जगत धन मयम लुब्धा कामुकः कामिनी मयम। भक्त हर एक को नारायण रूप में देखता है, नारायण मयम। प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार है, जिस प्रकार लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होती है, और जिस प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के लिए अनुकूल लगती है, उसी तरह परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खंभे के भीतर भी नारायण को देखा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा कहे गए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण का सर्वत्र दर्शन करता है, वह दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। दरिद्र नारायण को चुनना और धनी नारायण को परित्याग, भक्त की यह दृष्टि नहीं होती। प्रत्युत यह भौतिकतावादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 7 स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ओम ज्ञानमिदमस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोविष्टं सावितामिदेन भूतले स्वयं रूपा कदावयं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीहरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरा गला थोड़ा बैठ गया। एतवान एव लोकेस्मिन् पुंसा स्वर्था परास्मिता एकांत भक्ति गोविंद है यह सर्वत्र तदीक्षणम्। तो इस अध्याय में लाल महाराज अपने मित्रों को सिखा रहे हैं कि उन्होंने अपने माता के गर्भ में क्या ज्ञान प्राप्त किया। थोड़े दिनों में ही हम नृसिंह चतुर्दशी मनाएंगे, तो इसके संबंध में प्रहलाद महाराज की कथा भी हम पढ़ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज वैसे महाजन है, स्वयंभू नारद समूह कुमार कपिल मनो प्रद जनक विष्णु बलीर भाई ये सके 12 महाजन हैं, जिनका वर्णन भागवतम के 6 स्कंद में है, जिनमें से एक है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? असुर या असुर? असल में वो भगवान के भक्त है, बहुत ऊंचे कोटि के भक्त। खैर, वो असुर का व्यवहार कर रहे थे भगवान की लीला को ज्यादा मधुर बनाने के लिए। उनकी इच्छा थी कि मृत्यु से वो बच जाए, इसलिए वो पर्वत में गए बड़ी गहरी तपस्या करने के लिए। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी, एक समय वो अपने पांव के अंगूठे पर खड़े थे, आकाश की तरफ हाथ उठाकर, और उनका पूरा शरीर चींटियों से भर गया था। इंग्लिश में कहते हैं एंट हिल, चींटियों का पहाड़ बन गया था। जब भी वो खड़े रहे और देवताओं के 100 वर्षों के लिए उन्होंने पानी का एक बूंद नहीं पिया। आप एक निर्जल एकादशी में एक दिन कुछ जल नहीं पीते हैं, वो सोचते हो कि आपने बड़ा चमत्कार कर दिया। पर हिरण्यकश्यपु में इतनी शक्ति थी कि देवताओं के 100 वर्षों के लिए, हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे बराबर बनते हैं, तो देवताओं के 100 वर्षों के लिए उन्होंने पानी का एक बूंद नहीं पिया। ये थी उनकी शक्ति। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके पास कितनी शक्ति थी। तो प्रहलाद महाराज उस समय माता के घर में थे, माता का नाम था कयाधु। देवताओं, अनेक देवता अत्यंत दुखी थे हिरण्यकश्यपु की तपस्या से, और उन्हें डर था कि ये जो बच्चा माता के घर में है, क्या कुछ प्रॉब्लम? उनके मन में ये भय था, ये जो बच्चा माता के घर में, श्रीमती हिरण्यकश्यपु के घर में है, वो कहीं पिता जैसे राक्षस नहीं बन जाए। कई बार कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, और कई बार ये सच भी नहीं निकलता, पर अक्सर सोचते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तो इंद्र और अनेक देवता प्रहलाद की माता को घसीट कर ले जा रहे थे। उनका उद्देश्य था प्रहलाद की माता कयाधु को स्वर्ग लोग, इंद्र लोग में ले जाएंगे। वो जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा। नारद मुनि, जैसे आप जानते हो, हमेशा ठीक स्थान पर पहुंच जाते हैं। जब ध्रुव महाराज महल छोड़कर जंगल में जा रहे थे भगवान को खोजने के लिए, नारद को पता था ये बड़ा श्रद्धालु भक्त व्यक्ति है, तो ठीक स्थान समय नारद मुनि वहां पहुंच गए, और नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश दिया। मृगारी शिकारी का उद्धार भी नारद मुनि ने किया। तो नारद मुनि को शक्तवेश अवतार माना जाता है, और उन्हें हमेशा पता रहता है ठीक समय में कैसे पहुंचना। तो नारद मुनि पहुंच गए, और नारद मुनि ने कहा, तुम ये निर्दोष औरत को क्यों घसीट कर ले जा रहे हो? देवताओं ने कहा, आप इन्हें निर्दोष बुला रहे हो? ये तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, उसके घर में एक असुर है पिता जैसे। नारद ने कहा, नहीं, इस औरत के घर में असुर नहीं, इस औरत के घर में एक महान संत है। तो फिर प्रहलाद के कहने पर देवताओं ने प्रहलाद की माता को छोड़ दिया, और नारद मुनि प्रहलाद की मां को अपने आश्रम में ले गए। जो संत है वो हर स्थिति का लाभ उठाता है भगवान का उपदेश देने के लिए। तो नारद मुनि ने अपने आश्रम में प्रहलाद की मां को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और प्रहलाद की मां समय के साथ भूल गई इस संदेश को, पर प्रहलाद नहीं भूले। तो इस अध्याय में, पिछले कई अध्यायों में आपने पढ़ा है प्रहलाद महाराज ने क्या शिक्षा दी अपने मित्रों को। प्रहलाद महाराज के मन में सदा एक ही भाव था, समाज का सुख। और हालांकि उनके पिता ने उन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों में डाला, चारों तरफ प्रहलाद के चौकीदार होते थे, पर उस स्थिति में भी प्रहलाद ने प्रचार किया। प्रहलाद के पिता समझ नहीं पाते थे कौन आकर मेरे बेटे को ये दिव्य ज्ञान दे रहा है। तो एक समय हिरण्यकश्यपु ने संत और अमर का कौन थे, उनके अध्यापक, और संदन मरका को हिरण्यकश्यपु ने बुलाकर पूछा, मेरे बेटे को ये दिव्य ज्ञान कौन दे रहा है? मुझे लगता है वैष्णव संत वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे पिता को, मेरे पुत्र को ये ज्ञान प्रदान देने के लिए। संदन मरकर ने कहा, हमने तो किसी वैष्णव को आते हुए नहीं देखा, पर चिंता मत करो, हम इसको ऐसी शिक्षा देंगे को भूल जाएगा विष्णु को और आपके शरणागत हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद संदन मरकर ने सूचना दी हिरण्यकश्यपु, ये अब आप टेस्ट कर सकते हो, अजमा लो, हमने अपने बेटे आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल बदल दिया है, अब वो सदा यही कहेगा कि आप हो सर्वश्रेष्ठ। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुलाकर बेटे को गोद में बिठाया और पूछा, ये बताओ सर, अनेक प्रकार की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या शिक्षा तुमने सीखी? और प्रहलाद ने उत्तर में क्या कहा, नवदा भक्ति का उच्चारण किया। और जैसे ही पिता ने नवदा भक्ति का उच्चारण सुना, उन्होंने तुरंत ही बेटे को उठाकर नीचे फेंक दिया। तो प्रहलाद के उदाहरण से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। ये हम देखते हैं कि किस प्रकार भक्तों में प्रचार का उत्साह होना चाहिए। तो इस अध्याय में प्रहलाद महाराज ये उपदेश दे रहे हैं कि वही उपदेश दे रहे हैं जो कि उन्होंने किससे प्राप्त किया था, नारद मुनि से। इस घटना के द्वारा आप ये भी समझते हो कि हमारा जीवन माता के गर्भ में आरंभ हो जाता है। जैसे आज के वातावरण में गर्भपात कराना, नकली तरीके से संतान रोकना, ये बहुत ही पॉपुलर है, पर हम भूल जाते हैं हम इतना भारी पाप कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार के कार्यों में जुड़ोगे तो क्या परिणाम होगा, कभी भी भविष्य में आप रोशनी नहीं देख सकोगे। जिसका अंतर है, जिसका अर्थ है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ से तीसरे गर्भ से चौथे गर्भ में आपको गुजरना पड़ेगा, गर्भ के अंदर तो आपको रोशनी नहीं दिखती। तो ये है परिणाम जब आप शास्त्र के विपरीत कार्य में जुड़ते हो। और प्रहलाद महाराज के उदाहरण से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है कि व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है कहाँ, माता के गर्भ में। तो प्रहलाद महाराज इस अध्याय में केवल वो शिक्षा दे रहे हैं जो कि उन्होंने नारद मुनि द्वारा स्वीकार किया था। और ये शिक्षा कब प्राप्त हुई थी, जब वो थे माता के घर में। तो ये जो श्लोक है, इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, पहले जो 54-55 श्लोक है, इन श्लोकों में प्रहलाद महाराज यही स्थापित कर गए हैं क्या, कि हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में हम सबका कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम गोविंद के चरण कमलों की सेवा करें, जो कि हर चीज के कारण है। तो भौतिक जगत है एक बड़ा जेल खाना है या नहीं, यहाँ के केवल क्लेश ही क्लेश। प्रहलाद महाराज ने एक प्रार्थना में यह कहा, सुचेत तो विमुख था चेत था इंद्रियार्थ माया से खाया ब्रह्म उर्वतो विमोरम। जब मैं सोचता हूं देखता हूं किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत दुख होता है इस घटना को देखकर। तो भक्त वैष्णव जब देखता है कि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी योजना कर रहे हैं कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदला जाए, आजकल के जो विज्ञानी हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपकी आंखें कमजोर हैं तो उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट लेंस दे दिया है, चश्मा तो बहुत पहले दिया था पर अब तो कॉन्टैक्ट लेंस आप अंदर चश्मा पहन सकते हो, किसको देखेगा अभी नहीं। अगर आपको सुनने की तकलीफ है, बहरे बन रहे हो, तो आपको हियरिंग एड बन जाता है और बिल्कुल छोटा तो कोई देख भी नहीं सके। आपके बाल गिर रहे हैं, गंजे हो रहे हो, नो प्रॉब्लम, हम आपको नकली बाल दे देंगे, कोई पहचान ही नहीं सकेगा। आपकी किडनी नहीं चल रही तो ट्रांसप्लांट करा लो। तो देखा जाए तो आज के विज्ञानी हैं केवल यही प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। और भक्त जो है वो जानता है कि इस भौतिक संसार में चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो असली सुख प्राप्त नहीं होगा, केवल सुख की झलक दिखती है। पर अगर हमें असली सुख चाहिए, असली शांति चाहिए, तो क्या है उपाय? भक्ति योग। ये है प्रहलाद महाराज की शिक्षा का निचोड़। ये जो अनेक अध्यायों में आप प्रहलाद महाराज की शिक्षा पढ़ रहे हो, पर इनका निचोड़ क्या है? ये भक्ति योग एक माध्यम है। तो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि परम भगवान के चरण कमलों की सेवा करना जो कि हर चीज के कारण है। वो जो भक्त है वो भगवान को हर जगह देखता है और यही है उसके जीवन का लक्ष्य। तो चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भक्ति योग। जैसे भागवतम के चौथे स्कंद में आप नारद मुनि जी की शिक्षा प्राप्त करते हो जो कि उन्होंने प्रचेतस को दिया था। प्रचेतस महाराज प्रचिनाभरीषद के पुत्र थे जिन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की थी। तो नारद मुनि ने कहा मैं तुम सब भाइयों से, भगवान ने कहा मैं सब तुम सब भाइयों से प्रसन्न हूं क्योंकि तुम सब भाइयों में एक ही भाव है भक्ति योग। तो उसी प्रकार चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, हम सबका मूल उद्देश्य होना चाहिए भक्ति योग। तो ये आज के श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से नारद मुनि कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें परम भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए जो कि हर चीज के कारण है। ईश्वर परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह नाद राधे गोविंदा सर्व कारण कारण। परम भगवान जो है हर चीज के कारण है। अज्ञानता में व्यक्ति सोचता है कि अगर मैंने सफलता प्राप्त की है तो ये सफलता मेरे प्रयास के कारण है। जैसे भगवान गीता में तीन गुणों का वर्णन करते हैं, जब व्यक्ति भौतिक जगत में आता है तो तीन गुणों के प्रभाव में आता है। क्या है तीन गुण? सतगुण, राजगुण, तमगुण। सतगुण का लक्षण यह है कि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, कम से कम वो ये तो पहचान सकता है क्या ठीक है क्या प्रतिकूल है। पर राजगुण के प्रभाव का ये लक्षण है व्यक्ति अत्यंत प्रयास करता है, संघर्ष करता है और ये सोचता है कि ये सब सफलता प्राप्त हुई है मैंने प्रयास के कारण, इसलिए मुझे हर चीज को भोग का लाभ उठाना चाहिए, मुझे असली भोक्ता बनना चाहिए परम भगवान नहीं। तो जो भक्त है वो जानता है कि हर चीज के असली स्वामी कौन है? परम भगवान। इसलिए वो हर वस्तु, हर सुविधा, हर पल का उपयोग करना चाहता है। किस लिए? भगवान की सेवा में। यहां स्पष्ट प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो कि हर चीज के कारण है। और भगवान को हर जगह देखो। अगर आप कोई खूबसूरत वस्तु को देखो तो आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे इस खूबसूरत वस्तु का लाभ उठाना है। आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं इस खूबसूरत वस्तु को परम भगवान की सेवा में लगाऊं। ये है जब शास्त्र में कहा गया है परम भगवान को हर जगह देखना, मतलब कि हर जगह ये स्वीकार करना कि परम भगवान ही है हर चीज के स्वामी। भोक्ता नाम यज्ञ तपोसम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान ही है असली भोक्ता। तो ये है असली भाव। तो यहां प्रहलाद महाराज एक बार फिर से, ये नहीं कि ये जो संदेश दिया जा रहा है इस श्लोक में, पहली बार आप इस संदेश को सुन रहे हो। ये संदेश आप प्रहलाद महाराज के द्वारा सुन बैठे हो, है कि नहीं? कि पिछले अध्यायों में प्रहलाद महाराज ने जो अपने असुरिक मित्रों को जो उपदेश दिया, ये तो कई बार कह चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। और ये इस समय आप भगवतम के सातवें स्कंद को पढ़ रहे हो, पर पिछले छह स्कंदों में भी और आगे के पांच स्कंदों में ये बात बार बार स्थापित होती है। क्या क्या? कि भक्ति योग ही असली उद्देश्य है। तो क्या कारण है कि यही विषय की चर्चा बार बार की जाती है? क्या कारण है? कारण यह है कि हम बदजीव बड़ी सरलता से भूल जाते हैं, इसलिए हमें बकायदा सुनने की आवश्यकता है। बार बार सुनोगे तो फिर ये भाव हृदय में रहेगा। इसीलिए अगर एक बार सुनने से काम चलता तो फिर शास्त्र में ये श्लोक नहीं होता। कौन सा श्लोक? नष्ट प्रेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक के भक्ति भावती नैष्ठिकी। जो व्यक्ति ध्यान से नियमित रूप से रोज भगवत का संदेश सुनेगा, उसकी हृदय की मैल दूर होगी। इसलिए ये श्रवणम कीर्तनम बहुत आवश्यक है। तो प्रहलाद के पिता ने जब बेटे को गोद में बिठाकर पूछा, बेटा ये बताओ तुमने क्या सीखा है तुम्हारे अध्यापकों के द्वारा, तो बेटे ने क्या कहा? नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। तो ये नवदा भक्ति का वर्णन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, इसका उच्चारण तो प्रहलाद महाराज ने किया। पर सबसे पहले प्रहलाद महाराज ने ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त किया? नारद मुनि जी के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज जो शिक्षा दे रहे हैं, एक रूप से आप कह सकते हो नारद मुनि जी की शिक्षा है। और आप परंपरा की शिक्षा में ये देखते हो कि बेशक गुरु अलग अलग समय में आते हैं, पर उपदेश एक ही है। प्रहलाद महाराज 100% तोते के समान वही उपदेश दे रहे हैं जो कि नारद मुनि दे चुके हैं। जो नारद मुनि वही दे रहे हैं जो कि ब्रह्मा जी दे चुके हैं। यह है परंपरा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें वही उपदेश दिया जो कि ठाकुर भक्ति विनोद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने दिया। तो अगर हम वही ज्ञान जो कि परंपरा द्वारा आ रहा है यथारूप आगे प्रस्तुत करेंगे तो फिर इस ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते थे, उदाहरण देते थे, अगर आप डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार लोगे उसका असर पड़ेगा। तो अगर हम ज्ञान को परंपरा के आधार पर लेंगे तो उसका पूरा असर पड़ेगा। तो यहां प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जीवन का असली लक्ष्य है परम भगवान की सेवा में जुड़ना जो कि हर चीज के कारण है, और जो भक्त है वो हर स्थान में किसे देखता है, परम भगवान को देखता है। और ये है जीवन का असली लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। साधारण व्यक्ति से पूछोगे क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य, तो क्या कहेगा? खाओ पियो जियो, किसी प्रकार से भौतिक कार्य में इंद्रिय तृप्ति में जुड़ो। ये है अज्ञानता का प्रभाव। इसलिए कहा गया है ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशतज्ञ। हम सबका जन्म हुआ था अंधकार में, अंधेरापन में, पर साधु गुरु के सहयोग से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे हम सब अज्ञानता में थे, पर भगवान भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को यह आदेश दिया था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। प्रभुपाद जी का आदेश था पश्चिम देशों में प्रचार करने के लिए, पर प्रभुपाद जी ने यह भी अनुभव कर लिया था कि भारत में लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने पश्चिम देशों में इस्कॉन के केंद्रों की स्थापना की, उनके मन में यह भाव आया कि अब मुझे भारत के वासियों को भी बचाना है। तो अपने 100 विदेशी भक्तों के साथ वो भारत में लौटे यहां प्रचार शुरू करने के लिए, और आज इसके कारण लाखों लोग जुड़ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्त है वो भक्ति योग की शिक्षा देता है, क्योंकि ये है शास्त्रों का वर्णन। ये यहां स्पष्ट लिखा है ये है जीवन का लक्ष्य, और ये इस विषय का वर्णन है शास्त्रों में। शास्त्र का अर्थ क्या है? भगवान की वाणी। भगवतम के 6 स्कंद में आप आजमिल की कथा पढ़ते हो। आप पढ़ते हो किस प्रकार आजमिल का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, पर वो गिर गए थे बुरी संगत में, और उनके सबसे छोटे बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण। पर वो अपनी वैश्य पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें अनेक प्रकार के पाप के कार्यों में जुड़ना पड़ा। यमराज ने निर्णय किया अब इसका मृत्यु का समय आ गया है। हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी बनते हैं। हम अज्ञानता में सोचते हैं कोई साक्षी रही, तो यमराज ने 3 यमदूतों को भेजा, क्योंकि 3 माध्यम हैं जिनके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिनके द्वारा भगवान को भूल सकते हैं। ये 3 माध्यम क्या हैं? ध्येय। ध्येय द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हो, ध्येय द्वारा भगवान को भूल सकते हो। फिर दूसरा क्या है? वाणी। वाणी द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हो, वाणी द्वारा कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, और वाणी द्वारा प्रजल्पा और गलत प्रकार का भोजन भी स्वीकार कर सकते हो, और तीसरा क्या है? मन। तो ये 3 साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। अगर आपने शरणागत होना है तो भी इन 3 साधनों की आवश्यकता है, और इन 3 के द्वारा आप भगवान को भूल भी सकते हो। तो जैसे ही यमराज आजमिल ने यमदूतों को देखा, देखते ही वो घबरा गए, और घबरा कर बड़ी ऊंची आवाज से उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे नारायण जो निकट में खेल रहा था उसको उसके नाम को पुकारा। जैसे ही उन्होंने गहरी आवाज से नारायण पुकारा, वहां पहुंच गए भगवान विष्णु के प्रतिनिधि। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी एक समय लेक्चर दे रहे थे लॉस एंजलिस में, और इस विषय पर प्रभुपाद जी ने कहा जैसे कि पुलिस की मोटर घूमते रहती है, और जब आप टेलीफोन करो तो फिर पुलिस एकदम वहां पहुंच जाती है कि नहीं। मुझे एक अनुभव था, मैं पिछले साल 2 पहले एक शहर में था अमेरिका में जिसका नाम है बोइज़ी। छोटा शहर है जहां इस्कॉन का बड़ा सुंदर केंद्र है। तो वहां कोई दुर्घटना बीती थी तो वहां के प्रेसिडेंट ने एकदम पुलिस वालों को बुलाया और पुलिस वाले एक मिनट में पहुंच गए। एक मिनट आप मानो कि फोन नीचे रखा होगा दरवाजे के सामने। तो मैं जरा हैरान हो गया था। मैंने कहा मैं इतना तो जानता हूं कि अमेरिका इज एफिशिएंट, पर इतना एफिशिएंट आपने फोन नीचे ही रखा और पुलिस की गाड़ी आपके दरवाजे के सामने। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि हम इसी इलाके में घूम रहे थे, तो जब आपका फोन आया तो हम आपके पड़ोस में ही थे। तो प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया था। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान नारायण के प्रतिनिधि विष्णु दूत घूमते रहते हैं हर जगह, और जिधर हरि नाम का उच्चारण हो वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे कि एक समय जब संस्था नहीं थी अमेरिका में, भक्तों ने प्रभुपाद जी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम की योजना बनाई थी एक बड़े हॉल में, और भक्तों ने प्रभुपाद जी से कहा था, प्रभुपाद जी देयर विल लॉट्स ऑफ डिवोटीज, लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग, कई हजार लोग आएंगे, पर इतने लोग नहीं आए। तो भक्तों के हृदय में थोड़ा पछतावा था। हमने प्रभुपाद जी से कहा बहुत लोग आएंगे और कम लोग आए, तो प्रभुपाद जी ने कहा नथिंग वॉज लॉस्ट, कुछ नुकसान नहीं, आप लोगों ने कीर्तन किया तो उस कीर्तन में परम भगवान राधा रानी समेत उपस्थित थे देवताओं के साथ, तो कुछ नुकसान नहीं। तो जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हो तो भगवान स्वयं वहां उपस्थित होते हैं मेहमान के रूप में, केवल आप अपने भौतिक नेत्रों से देख नहीं सकते। तो जैसे ही नारायण नाम को पुकारा विष्णु दूत भी वहां उपस्थित हो गए, और यमदूत ने पूछा कि ये बताओ कि धर्म, विष्णु दूतों ने पूछा ये बताओ धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म के इस विषय में उन्होंने उत्तर में कहा धर्मां जो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। तो ये आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि जीवन का लक्ष्य यह है परम भगवान की सेवा करना। गोविंदा, गोविंदा के कई अर्थ हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गायों की देखभाल करते हैं, समाज में गायों की सुरक्षा गायों की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। सात माताएं हैं जिनमें एक माता क्या है, गौ माता, और जिस समाज में गौ माता की सुरक्षा ना हो उस समाज में कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए गौ माता की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं भौतिक जीवन में चरण परम भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, जो कि हर चीज के कारण है। वो जो भक्त है वो हर जगह भगवान को देखता है, भगवान के हाथ को देखता है, और ये होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। वो ये है शास्त्रों का निर्णय। तो शास्त्र का निर्णय ये है कृष्णातीत भगवान स्वयं, शास्त्र का निर्णय ये है भक्ति योग। भगवद गीता को आप पढ़ो, भगवद गीता का क्या है निर्णय, भक्त्या माम अभिजानते, भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे जान सकते हो, यह है भगवान का उपदेश। योगी नाम अपी सर्वेशम, असली योगी कौन है, जो सदा मेरा चिंतन करता है सदा मेरा स्मरण करता है, वो है ये असली योगी। तो भक्ति योग है शास्त्रों का निर्णय, और भक्ति योग की शिक्षा हमें शास्त्रों में प्राप्त होती है। संक्षेप में भक्ति योग का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में। भगवान ने वह हमें जीव दी है। भक्ति योग आराम होता है किसके साथ, श्रवणम और कीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। रूप और सनातन दो भाई थे जो कि जुड़े थे जबरदस्ती उस समय के प्रसिद्ध राजा की सेवा में, उसके राज्य का वो शासन कर रहे थे, पर दोनों की रुचि नहीं थी इस कार्य में। तो पहले रूपा ने अपनी सरकारी नौकरी त्यागी, और जब उन्होंने उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। उसके पश्चात उनके भाई सनातन ने भी नौकरी त्यागी। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग इलाहाबाद में शिक्षा दी और सनातन को भी दी। तो अनेक विधियों की चर्चा की चैतन्य महाप्रभु ने, पर अंत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये पांच विधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, और इनमें सबसे पहले कौन से उपदेश था? साधु संग। तो साधु संग में रहोगे तो सदा श्रवणम कीर्तनम की महिमा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकोगे, और अगर साधु संग से जुदा हो जाओगे तो ये उपदेश प्राप्त होगा नहीं होगा। इसलिए हम सब भक्तों का, चाहे आप ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, प्रयास रहना चाहिए कि हम साधु संग में रहें। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है साधु संग ज्ञान संग सर्वशास्त्र काय लाभ मात्र साधु संग सर्वश्री है। सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है? भक्तों की संगत में रहो। साधु संगत का अर्थ है उनकी संगत में जिन्होंने निर्णय कर लिया है कि हमें ये जीवन भगवान की शिक्षा के आधार पर बिताना चाहिए। ये नहीं कोई ढोंगी साधु और हम जो कि अपना उपदेश दे रहा है। साधु का लक्षण यह है कि वो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर उपदेश देता है। तो सबसे पहला था साधु संग। साधु संग में रहोगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और ये ज्ञान का निचोड़ क्या है? श्रवणम कीर्तनम हरिनाम कीर्तन। साधु संग में रहोगे तो भगवान के नामों के उच्चारण की महिमा ज्ञान प्राप्त होगा, नामा कीर्तन। तो शास्त्रों में बार बार इस विषय पर बल दिया जाता है कि कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं उनके दिव्य नामों के माध्यम से। तो श्रवणम और कीर्तनम, कीर्तनम का अर्थ है जीभ से भगवान के नामों का उच्चारण करना, जीभ से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, भगवान के अनेक गुणों का गुणगान करना। जीभ का अगर आप सदुपयोग करोगे तो हम मन और इंद्रियों को सरलता से वश में ला सकोगे, पर अगर जीव का को वश में नहीं करोगे तो फिर आध्यात्मिक परिवर्तन कठिन हो जाएगा। तब भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं जीव पेट और जेनिटल्स, ये तीनों एक सीधी लाइन में हैं। जीव को कंट्रोल में रखोगे तो दूसरे इंद्रियों को वश में रखना सरल होगा, और अगर जीव को वश में नहीं रखोगे तो दूसरे इंद्रियों को वश में रखना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जीव का आध्यात्मिक मार्ग में खास स्थान है, इसलिए कहा गया है दीव जीव द्वारा हमें सदा क्या करना चाहिए? परम भगवान का गुणगान करना चाहिए, परम भगवानों की लीलाओं का वर्णन। आप जब एक दूसरे को मिलते हो पूछते हो कैसे हो, पर हमें पूछना चाहिए कोई चाहिए आध्यात्मिक जीवन में आप आओगे कैसे बढ़ रहे हो, और कृष्ण कथा करनी चाहिए, कृष्ण कथा और हरि नाम का उच्चारण। हरि नाम का उच्चारण करोगे कली काले नामों पर कृष्ण होता है, और हरि नाम के उच्चारण का क्या लाभ है? अनेक लाभ है, पर जिनमें से एक लाभ यह है कि मैल जो है दूर हो जाती है। चेतो दर्पण मानना, ये आप खुद अनुभव कर सकते हो। आप खुद अनुभव कर सकते हो कि जब आप जाप करते हो ध्यान से, जब आप बड़े उत्साह से सेवा करते हो, तो आपका आध्यात्मिक उत्साह भी ऊंचा रहता है। नहीं? जब आप ढीले हो जाते हो साधना में, जब आप ढीले हो जाते हो जाप करने में, तो आपका आध्यात्मिक उत्साह घट जाता है। सच ये आप खुद अनुभव कर सकते हो। जैसे अगर जब आपको कोई भोजन दिया जाए तो आप खाते हो, आप खुद महसूस कर सकते हो पेट भर गया। तो इसलिए चैतन्य महापुरुष ने कहा, पहला आदेश था महत्वपूर्ण साधु संगत, दूसरा था नाम कीर्तन, तीसरा था श्रवणम भगवतम, ध्यान से भगवतम को सुनो। तो भगवतम को सुनना, जैसे आप सब इस समय भगवतम क्लास में बैठे हो, तो भगवतम को ध्यान से सुनना पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवतम में है क्या सबसे उत्तम ज्ञान। व्यासदेव जी ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी, इसके सार को वेदांत सूत्र में प्रस्तुत किया था। जब भी उन्हें लग रहा था कि कुछ निराशा है, कमी रह गई है, फिर नारद मुनि ने उन्हें कहा कि तुमने क्योंकि शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, जिसके पश्चात उन्होंने हमें श्रीमद् भगवत का उपदेश दिया। तो श्रीमद् भगवत पढ़ोगे सुनोगे तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, और जो कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और चौथा क्या था, श्रद्धा और आचरण से भगवान के आचर विग्रह की सेवा। इस विषय में मैं सोच रहा था आपको चंदन यात्रा की कथा सुनाने की, पर इतवार को सुनाएंगे चंदन यात्रा की कथा, कि भगवान के आचर विग्रह की श्रद्धा से कैसे सेवा करनी चाहिए। और पांचवा था धाम में वो निवास करो, या अपने स्थान में ऐसा वातावरण रखो जहां की कृष्ण भक्ति में जुड़ सको। तो तात्पर्य में भी यही विषय कहा जा रहा है कि जो भक्त है वो सदा भगवान को हर स्थान में देखता है। आप कहोगे ये योग्यता नहीं है मेरे में, तो मैं तो हर स्थान में कृष्ण को नहीं देखता, मैं हर स्थान में केवल माया का रूप देखता हूं। मैं यही सोचता हूं कैसे मैं इसका लाभ उठाऊं, कैसे इसका उपयोग करूं अपनी सेवा, है ना। आप कह सकते हो और सोचते होगे मन में, तो ये स्थिति कैसे सुधरेगी? ये सुधरेगी अगर हम दवाई लेंगे। जैसे रूपक गोस्वामी जी कहते हैं उपदेश अमृत में, भगवान के नाम तो अत्यंत मीठे हैं चीनी जैसे, भगवान की जो लीलाएं हैं अत्यंत मीठी हैं चीनी जैसे, भगवान के जो गुण हैं अत्यंत मीठे हैं चीनी जैसे, पर क्योंकि मेरे जीव में अविद्या की बीमारी है इसलिए मैं भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको बुखार हो तो आप टेस्ट अनुभव करते नहीं कर सकते। तो क्या है उपाय? रूपक गोस्वामी जी कहते हैं इसका उपाय यह है, पर अगर आप ध्यान से जाप इत्यादि करोगे तो ये जो अविद्या की बीमारी है क्या होगा, दूर हो जाएगी और भगवान के नामों का मीठापन महसूस होगा। तो बेशक आज की स्थिति में आप इस संदेश का पालन नहीं कर सकते कि परम भगवान को हर स्थान में देखो, ये स्वीकार करो कि परम भगवान हर चीज के स्वामी हैं, पर अगर आप भक्ति के इन विधियों का पालन करोगे तो फिर अवश्य ही बिना शंका के इस योग्यता को प्राप्त कर सकोगे। अगर ये योग्यता प्राप्त नहीं होती तो आज क्यों लाखों भक्त जुड़े हैं सारे विश्व में कृष्ण भक्ति के, कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के साथ। आप खुद अनुभव कर सकते हो, जब आप जाप इत्यादि ध्यान से करते हो आपका आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहता है। तो शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, और साधु संगत में जब आप भक्ति के विधियों का पालन करते हो, जब ज्यादा सरलता के साथ आप इसे अनुभव कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज का उपदेश क्या है, प्रहलाद महाराज का उपदेश है कि हम सबको भक्ति योग में जुड़ना चाहिए, ये है जीवन का असली लक्ष्य। और हमें हर वस्तु का उपयोग करना चाहिए परम भगवान के चरण कमलों की सेवा में, जो कि हर चीज के कारण है। और ये बुद्धि प्राप्त बढ़ेगी अगर हम ध्यान से श्रवणम कीर्तनम करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये भक्ति का बीज ब्रह्मंड ब्रह्मिद कुनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति का बीज जो आपके हृदय में स्थापित हुआ है, ये बीज उगेगा अगर आप क्या करोगे, श्रवणम करोगे और कीर्तनम करोगे। और महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार आप खेती हो तो फेंसिंग करते हो चारों तरफ, जैसे हमारे हरे कृष्ण लैंड मंदिर में चारों तरफ दीवार है। दीवार क्यों है? कि गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ पाए, इसलिए। हाँ, जैसे अमेरिका में लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, पर उनको कोई चोर की चोरी का डर नहीं रहता, तो कोई दीवार नहीं है। कईयों का घर बिल्कुल खुला ही रहता है सारा दिन, करोड़पति, उन्हें चिंता नहीं है। पर जहां हमें चिंता है गलत व्यक्ति आ सकता है, तो हमने दीवार बनाई हुई है, ऊंची दीवार। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें अपने आप को भक्तों की संगत में सदा रखना चाहिए। भक्तों की संगत में रहोगे तो एक लाभ ये है कि अगर आप गलत रास्ते चल रहे हो, भक्त आपको आपके हाथ को पकड़कर आपको सीधे रास्ते में जोड़ देंगे। ये है विनम्रता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर आप सदा हरि नाम को उच्चारण करना चाहते हो, कमान में त्रिनाद पिश्री चेना का भाव होना चाहिए। त्रिनाद पिश्री चेना का भाव का अर्थ है कि हम अपने आप को सुधारने को तैयार हैं। अगर कोई हमें शिक्षा दे कि प्रभु ये तुम गलती कर रहे हो और इसको ऐसे सुधारो, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए, ए ये तो ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है मेरे पर, और इसलिए मुझे हमेशा टोकते रहता है। नहीं, हमें सोचना चाहिए ये मेरा असली मित्र है, ये मेरे सुधार के लिए मुझे कह रहा है किन चीजों से बचना, किन चीजों से नहीं बचना। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुम्हें घबरा जाना चाहिए। तो विनम्रता का असली अर्थ है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारने को तैयार हैं अगर हमें उपदेश दिया जाए। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हम सबको परम भगवान के चरण कमलों की सेवा में जुड़ना चाहिए, जो कि हर चीज के कारण है, और यही है जीवन का लक्ष्य, यही है जीवन का लक्ष्य। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ये जीवन के लक्ष्य की शिक्षा कौमार अचल प्रज्ञा 5 साल की आयु से प्राप्त होनी चाहिए। बचपन से ये शिक्षा प्राप्त होगी तो आप बड़े हो गए अच्छे गुणों के साथ। कुछ दिन पहले मैं कोई मेहमान आए थे मुझे मिलने, तो कह रहे थे अभी दिल्ली जैसे शहर में बच्चों के लिए स्कूल के हुक्का पार्लर बन गए हैं, छोटी दुकानें हैं जहां हुक्का पार्लर, मतलब कि आप अलग अलग फ्लेवर के हुक्का का टेस्ट होता है, तो आप वहां जाओ थोड़ा पैसा देना। बॉम्बे में नहीं बने, बॉम्बे में भी बन गए होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम बचपन से आज इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ जाते हैं सब गलत कामों में, और इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की आयु से माता पिता को बच्चों को आध्यात्मिक आदमी देना आरंभ कर देना चाहिए। पर अफसोस की बात है कि हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते। प्रभुपाद जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था आजादी के बाद, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप ये स्वीकार करते हो, आप कहते हो कि गीता में आपकी बड़ी श्रद्धा है, तो गीता की शिक्षा को स्कूलों में देना आरंभ करो। अगर ये स्कूलों में गीता की शिक्षा दी होती तो आज देश का नक्शा ही अलग होता। तो संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी इस अध्याय में अपने साथियों को वो उपदेश दे रहे हैं जो कि उन्होंने अपनी माता के गर्भ में प्राप्त किया था, और इस संदेश का निचोड़ क्या है कि हमको भक्ति योग में जुड़ना चाहिए, ये है जीवन का असली लक्ष्य, और ये है शास्त्रों का क्या शास्त्रों का निर्णय भक्ति योग, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के द्वारा यही उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि यही एक कार्य है जिसके द्वारा आप असली सुख अनुभव कर सकोगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? थोड़ा लेट हो गया। अभी एक दो क्वेश्चन लूंगा बस।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, देखते हैं कि भक्त लोग भक्ति करते हैं, बहुत से भक्त फॉल डाउन हो जाते हैं, मतलब भक्ति से भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं भक्ति। तो पिछले जन्मों का कुछ कर्म रहता है, इस जन्म का कर्म रहता है, दोनों सम्मिलित रहते हैं, इसमें क्या कारण रहता है इसके बारे में?
तो भक्त लोग गिर जाते हैं,
भक्ति छोड़ देते हैं या पाप कर्म में लग जाते हैं, फिर दोबारा जाके वो सब चीजों में।
भगवान ने हम सबको छूट दी हुई है। छूट ये है कि हम भक्ति में जुड़े रहे। भगवान ने अर्जुन से पूछा 18वें अध्याय में, क्या तुमने ध्यान से संदेश सुना है? क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई है? फिर भगवान अर्जुन ने कहा हाँ, मैंने ध्यान से सुना। फिर भगवान ने कहा अब करो जैसे ठीक लगे। तो भगवान ने हमें छूट दिए, हमें माया में गिरे, हम माया में गिरे और कहें ये तो मेरे पूरे जन्म के संस्कार थे, अरे क्या करूं। नहीं, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम नहीं फिसलें। जैसे आप प्रयास करते हो आप बीमार नहीं हो, तो प्रयास करना चाहिए कि आप नहीं फिसलो। और अगर आप अनेक नियमों का पालन करोगे और इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी की कृपा से पूरी सुविधा है, सरलता के साथ आप भक्ति की विधियों का पालन कर सकते हो। तो अगर हम नहीं करें तो फिर हमारा नुकसान है, और करें तो हमारा लाभ है। यस
महाराज, दो दिन से ये प्रश्न मेरे दिमाग में था कि हम लोग जब पुस्तक वितरण करते हैं तो कई लोग बोलते हैं हमने शराब पी रखी है, कई बोलते हैं हमने मांस खा के रखा है, मांस खा रहे खा के आए हैं। तो उन लोगों को किस तरह कन्विंस किया जाए पुस्तक वितरण के लिए?
बोलो, कलयुग में सब पतित हैं, शराबी हैं, मांस खाने वाले हैं। ये किताब खास करके आपके लिए है।
हरि बोल।
क्योंकि कलयुग की प्रजा अत्यंत पतित है, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आप सुधरना चाहते हो ना।
थैंक यू अरविंद महाराज। हरे कृष्ण।
जैसे कि नित्यानंद भगवान है जगाए मदाय का उदाहरण किया। ओके, एनी मोर क्वेश्चन?
हरे कृष्णा। जैसे बाप वैसा बेटा, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी गृहस्थ डिवोटी का बेटा स्वभाव में अच्छा है लेकिन वो बोलेगा कि पिताजी मुझे अभी भक्ति नहीं करने का है, भक्ति बाद में करता हूँ, थोड़ा मुझे भौतिक दुनिया में रहना चाहिए, ऐसा। तो उसको क्या बोलेंगे आप?
आप बोलो हर कदम में खतरा है, पदम पदम याद भी पदम न देशा, कुछ गारंटी नहीं आप कब तक रहोगे जी। एक समय श्री प्रभुपाद अमेरिका में एक अमेरिकन भक्त को संन्यास दे रहे थे। आप जानते हो इस्कॉन संन्यास मतलब पत्नी स्त्रियों से कोई संबंध नहीं। तो उस सभा में एक इंडियन जर्नलिस्ट था, उसने कहा स्वामी जी हमारे शास्त्र में लिखा है कि संन्यास अब बूढ़ों को देना चाहिए, आप जवानों को दे रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने पूछा आपके विचार से बूढ़े का क्या अर्थ? तो उसने कहा जो मृत्यु के निकट हो। तो उस समय प्रभुपाद की आयु थी लगभग 75 साल, और ये जो जर्नलिस्ट था भारत का उसकी आयु थी 30-35 साल। वो प्रभुपाद जैसे उम्र में बहुत छोटा था। तो प्रभुपाद जी ने उससे जब पूछा मृत्यु का क्या अर्थ, उसने कहा मृत्यु के निकट। तो प्रभुपाद जी ने उसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे से पहले नहीं होगी? उसने कहा नहीं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा तुम भी बूढ़े हो। तो हम सब बूढ़े हैं, ये भ्रम है कि हम सोचते हम जवान हैं, क्योंकि हम किसी समय भी किसी की भी मृत्यु आ सकती है, सच या झूठ। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी ये पॉलिसी खरीदो हम गारंटी देते हैं 80 साल से पहले मृत्यु नहीं आएगी। तो हम सब बूढ़े हैं, केवल भ्रम में आकर सोचते हम जवान हैं। ओके बेटा स्टॉप, लास्ट क्वेश्चन।
हरिश्वर महाराज, हमारा श्रवण और कीर्तन में कैसे रुचि आएगा, और हम लोग पता भी नहीं चलता कि हम लोग इतने प्रजल्प कर लेते हैं, हमारा टाइम लॉस हो जाता है, फिर रात को सोचते हैं कि टाइम नहीं मिला और आज श्रवण हो नहीं पाया।
श्रवण कीर्तन में रुचि बढ़ेगी अगर आप प्रयास करोगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनका सहयोग करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। अगर आप खुद प्रयास नहीं करोगे तो भगवान मदद थोड़ी करेंगे। तो हमें श्रवणम कीर्तनम में रुचि कैसे बढ़ेगी, अच्छी साधना रखो, सुबह बैठकर मंदिर में जाप करो, क्लास में आओ, मंगल आरती में आओ और प्रजल्प से बचो। चिनक्य पंडित ने कहा है, आयुष्य कशन एको पीना लभया स्वर्ण कोटि भी, एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकते। तो हम सोचते हैं कई बार, कई साल हम लोग ने इतनी जिंदगी बिताई है गलत कामों में, तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और बार बार सुनते हो तो इसका पालन करो, ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा।